जी हैदर भाई, बिस्मिल्लाह कीजिए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ہم محرم کے عشرے کے بعد ہمارا دو ہفتوں کا ہم گیپ آیا ہے، تو امید ہے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں سے یہ سلسلہ ٹوٹا نہیں ہوگا. اور ہم بات کر رہے تھے شعر حدیث امام خمینی کی جو کتاب ہے اس کے حوالے سے، اس کو ریفرنس بناتے ہوئے، اور ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے تزکیہ نفس. اور تزکیہ نفس میں ہم نے جس طریقے سے گفتگو کو ترتیب دیا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ پہلے ان صفات کا ذکر ہم نے کیا جو کہ الحمدللہ ختم ہو چکا سلسلہ، جس میں ہم نے ان صفات کے حوالے سے بات کی کہ جنہیں اپنے نفس میں سے، اپنے قلب میں سے اکھاڑ پھینکنا ضروری ہوتا ہے. یعنی وہ اسی طریقے سے ہیں کہ جیسے کانٹے اور پتھر اور یعنی خراب اور مضر اور نقصان دہ کیمیکلز جو زمین میں ہوتے ہیں اور فصل کو اگنے نہیں دیتے، تو پہلے اپنے نفس کی زمین کو، اپنے قلب کی زمین کو ان سے پاک کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں اچھی صفات کا بیج بونا ہے. تو جو صفات حسنہ ہیں یا خیر و خوب ہیں ان کے بارے میں بھی اب الحمدللہ ہم کافی آگے آ چکے ہیں، اور پچھلی دفعہ ہم نے صفت صبر کی بات کی تھی. صبر کو کافی تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صبر کے بارے میں آئمہ علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام کے خاص طور سے ایسے اقوال موجود ہیں کہ جن میں آپ نے صبر کو ون آف دا موسٹ فنڈامنٹل کوالٹیز ایک مومن کی قرار دیا ہے، کہ اگر صبر نہیں ہوتا، صبر کی صفت مومن میں نہیں پائی جاتی، تو وہ اپنی زندگی میں کسی بھی اچھی چیز کو حاصل نہیں کر سکتا. اور صبر کا معنی ہم نے اسی لیے بہت تفصیل سے آپ کو بتایا، صبر کے فضائل کے حوالے سے قرآن کریم کی آیتوں کو بھی نقل کیا، جو کہ جو آغا نے جو حدیث پر بات کی ہے تو اس میں زیادہ آیتیں اتنی نہیں ہیں، تو لیکن میں نے اس میں آیتیں بھی آپ کے سامنے کوٹ کی کہ جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ صبر کی صفت خدا کی نظر میں اور رسول اور امام کی نگاہ میں ایک کلیدی یا بنیادی اہمیت کی حامل ہے. اور صبر کی تعریف کے حوالے سے بھی ہم نے دقت کی کہ آپ سمجھ لیں کہ صبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ مصیبت کو بیٹھ کے برداشت کرتے رہیں، گوشہ نشین ہو جائیں، کسی کونے میں چھپ جائیں پریشانی کے وقت، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک اعلیٰ ہدف رکھتا ہو اور پوری استقامت اور مضبوطی کے ساتھ اس اعلیٰ ہدف کی طرف حرکت کرتا ہو، اس کی طرف موو کرتا ہو، اور جتنے بھی مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، سختیاں آئیں، تو ان مشکلات سے گھبرائے نہیں بلکہ اپنی منزل کی طرف بڑھتا جائے. اور اس حوالے سے جو مثال ہم نے دی تھی خاص طور سے آیت اللہ خامنئی کے حوالے سے، کہ انہوں نے جو بیان کیا ہے کہ صابر انسان کون ہوتا ہے کہ جو کوہ پیما کی طرح ہوتا ہے، ماؤنٹینئر کی طرح ہوتا ہے، کہ جس طریقے سے پہاڑ کی چوٹی تک جانے کے لیے دقت برداشت کرنی پڑتی ہے، تو اس دقت کا نام صبر. بہرحال تو یہ میں نے اس لیے دو منٹ میں آپ کو دوہرا دیا کہ ان معارف کا یا ان مفاہیم کا دماغ میں رکھنا انتہائی ضروری ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری لائف کے لیے، ان کی بہت اہمیت ہے. اب اس کے بعد آگے بڑھ کر جو دوسری صفت ہمارے سامنے آتی ہے جس پر ابھی ہمیں بات کرنا ہے انشاءاللہ، وہ ہے صفت شکر. اچھا، صبر اور شکر جو ہیں یہ دونوں ہینڈ ان ہینڈ ہیں، एक दूसरे के ऐसे साथी हैं कि जिनका एक अटूट रिश्ता है, कि अनब्रेकेबल रिलेशनशिप है इनके दरमियान। ये तकरीबन आप समझ लें कि एक दूसरे से अलग नहीं होते, जुदा नहीं होते। और जो इंसान साबिर नहीं होता, वो हम उसके बारे में सेफली ये कह सकते हैं कि वो शाकिर भी नहीं होता, शुक्रगुजार भी नहीं होता। क्योंकि जिस इंसान में सिफते सब्र नहीं पाई जाती, उस इंसान के अंदर जो चीज आप ज्यादा देखेंगे ना, वो शिकायत करने वाला, कंप्लेनिंग, हालात का रोना रोने वाला, अपने आप को मुसीबत ज्यादा करार देने वाला, इस किस्म की सिफात आपको उस बंदे में ज्यादा दिखेंगी। तो यानी सिफत सब्र और शुक्र, तो जो इंसान हमेशा अपने आप को मुसीबत ज्यादा समझता रहेगा, उसे कहाँ ये बात नजर आएगी कि मुझे जिंदगी में खुदा की तरफ से कुछ नेमतें भी मिली हैं कि जिनका मुझे शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक, तो इस लिहाज से शुक्र सब्र दोनों आपस में साथ साथ हैं। अच्छा, तो और एक जुमला भी, रसूल खुदा का एक जुमला, उसके साथ एक वाकया भी, जैसे आयतुल्ला मज़ाहिरी ने सुनाया, वाकयात आप बहुत सारे पढ़ भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं, लेकिन एक हदीस है रसूल खुदा की कि जिसमें आपने फरमाया कि ईमान का आधा सब्र है और आधा शुक्र है। यानी 50% ईमान सब्र है और आधा जो बाकी 50% बचता है वो शुक्र है। तो अगर किसी इंसान में सब्र और शुक्र की सिफात दोनों पैदा हो जाएं, दोनों मौजूद हों, तो ऐसे इंसान का ईमान मुकम्मल हो जाता है। गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं आपको एक आयत का भी हवाला दे दूं और फिर मैं इस हदीस की तरफ आता हूं कि आपने बहुत मशहूर आयत है जो सुनी होगी, सूरह इब्राहिम की आयत है, तकरीबन 5 या 6। मुबशिर भाई देख लीजिएगा, किस कोई हैंड रेस कर रहा था, वो हैंड किस वजह से रेस कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, क्वेश्चन है या प्रॉब्लम है? जी
क्वेश्चन नहीं है, वो कुछ और
अच्छा
कुछ है।
जी ठीक। तो जो आयत है सूरह इब्राहिम की, आयत 4थी 5वीं आयत है कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि शुक्र के साथ खुदा ने एक वायदा भी किया है। जैसे मैंने आपको साबरीन के हवाले से बताया था कि कुरान करीम में साबरीन के साथ भी वादे किए गए हैं, हम तुमको एक नई जिंदगी देंगे, पाक जिंदगी देंगे। इन्नल्लाह मअ साबरीन, खुदा जो है वो साबरीन की मईयत में है, यानी खुदा जो साबरीन है वो अपनी जिंदगी में खुदा को साथ साथ पाते हैं और देखते हैं। तो ऐसे ही शुक्रगुजारों के साथ और शाकिर बंदों के साथ भी एक वायदा किया है खुदा ने, और वो वायदा क्या है? लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। लइन शकरतुम, अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे, अगर तुम शुक्रगुजार होगे, यानी खुदा की बारगाह में, लअज़ीदन्नकुम। अच्छा, ये जो हर्फ है सेंटेंस के आखिर में जो आ रहा है लअज़ीदन्नकुम, इसमें अगर आप अरबी जबान के हवाले से देखें ना, तो इस एक हर्फ के अंदर दो डिफरेंट पीसेस हैं ऑफ एम्फेसिस, यानी जोर देने के लिए बात पर दो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए गए। एक ये कि शुरू में जो ला आया है लअज़ीदन्नकुम, और बीच में जो नून पर तशदीद आई दन्नकुम, नून पर शद्दा है, तो ला एक ताकीद है कि हम ऐसा जरूर करेंगे, और लअज़ीदन्नकुम यानी हतमन, लाजमन। तो ये दो सोर्सेज ऑफ एम्फेसिस को कंबाइन करके, जोड़कर खुदा क्या कह रहा है? हम ज्यादा कर देंगे। यकीनन, हतमन, सर्टेनली, श्योरली, वी शैल इंक्रीज। लेकिन अब यहां पर जो आमतौर से हम लोग एक तर्जुमा करते हैं और उसके शुक्रगुजारी के हवाले से हम इस बात को एक यकीनी अमल अमर समझ के बैठ जाते हैं, वो क्या कि खुदा ये कह रहा है कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतों में ज्यादती करूंगा, मैं नेमतों को बढ़ा दूंगा। और हम खुश हो जाते हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीहें पढ़ना शुरू हो जाते हैं कि जो है कि अगर मेरे पास अभी मेरी तनख्वाह जो है वो 50,000 रुपए है तो अब खुदा जो है वो 70,000 करेगा, 1,00,000 करेगा, ये खुदा ने वादा किया। यही जो हमारी इस किस्म की जो गलत फहमियां हैं ना, ये बाज़ औक़ात हमें दीन से बदज़न कराने का सबब बन जाती हैं कि हम सही मारिफत नहीं पैदा करते जो कुरान के अल्फाज हैं, उसके मायना को सही नहीं समझते, जो पैगाम खुदावंदी और मासूम है उस पर ढंग से गौर नहीं करते, और अपनी तरफ से ये अजम्पशंस लेकर और फिर हम उसके बाद नाराज होना शुरू हो जाते हैं। देखें, मैं तो खुदा के इतने शुक्र कर रहा हूँ, मैं तो दिन में इतनी बार अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ, लेकिन मेरी तो नेमत ही नहीं बढ़ रही, मैं तो ये उम्मीद लगा के बैठा था कि मेरी आमदनी यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, मेरे एसेट्स इतने तरक्की करेंगे, कुछ भी नहीं हो रहा। खुदा का वादा क्या है? खुदा का वादा यहाँ पर जो लोग भी इसमें तर्जुमा नेमत करते हैं वो बहरहाल एक लफ्ज का इजाफा कर रहे हैं, और उसकी वजूहात क्या है अब वो एग्जैक्टली नहीं पता कि वो इनफेरेंस है। हकीकतन इस आयत में या इस जुमले में नेमत का कोई वर्ड नहीं है। लअज़ीदन्नकुम, हम यकीनन तुम्हारे अंदर ज्यादती करेंगे, यानी अगर तुम शुक्र करोगे, अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे तो ज्यादती किसमें होगी? तुम्हारे अंदर होगी। वी शैल इंक्रीज यू, या वी शैल है इन, वी शैल गिव इंक्रीमेंट इन यू, तुम्हारे अंदर। तो अब इंसान के अंदर ज्यादती होना या इंसान के अंदर इजाफा होना और इंक्रीमेंट होना क्या माने रखता है? अब हमें इस पर गौर करना पड़ेगा। तो इससे हमको ये बात समझ में आ रही है कि इंसान का असल सरमाया क्या है, जो मैं कई दफा आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूं कि इंसान का सरमाया सिफात है, इंसान का सरमाया, इंसान की जात डिफाइन होती है क्वालिटीज से, सिफात से। तो अगर खुदा ये कह रहा है कि तुम शुक्रगुजार बंदे बनोगे तो हम तुम्हारे अंदर ज्यादती और इजाफा कर देंगे, इसका मतलब यह है कि हम तुम पर इस तरीके से करम और फजल करेंगे कि तुम्हारे अंदर जो सिफात हैं, खूबियां हैं, अच्छाइयां हैं, वो बढ़ती चली जाएंगी, जो कि तुम्हारा रियल एसेट है। यानी जो कुछ भी हमारे बाहर है वो मेरा असल सरमाया नहीं है, असल सरमाया वो है जो मेरे अंदर। तो खुदा ये कहीं भी नहीं कह रहा कि जो नेमतें तुम्हारे हाथ में हैं उसमें हम इजाफा करते चले जाएंगे, और हम आयत का ये माना लेकर और उसके बाद खुदा से नाराज हो रहे होते हैं। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसकी अपनी मसलहतें, यानी हाथ में मौजूद नेमतों में इजाफा या कमी होने की अलग मसलहतें, वो इससे ताल्लुक नहीं। ये एक बात कि क्योंकि आम तौर से हम लोग इस चीज पर रहते हैं कि जी शुक्र से क्या होगा, शुक्रगुजारी से क्या होगा, नेमतें बढ़ेंगी। लेकिन कौन सी नेमतें बढ़ेंगी? वो नेमतें बढ़ेंगी जो आपका रियल एसेट है, और वो नेमतें आपकी जाती सिफात और क्वालिटीज हैं। ये एक बात जहन में रखिएगा। तो शुक्र के हवाले से हमने दो बातें अब तक आपसे की कि शुक्र सब्र के साथ कॉम्प्लीमेंट्री सिफात है। रसूल खुदा के कौल के मुताबिक ईमान का आधा सब्र है, आधा शुक्र, اور جس بندے میں یہ دونوں صفات جمع ہو جاتی ہیں اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ خدا نے شکر گزار بندے سے وعدہ کیا ہے زیادتی کا، اضافے کا، انکریمنٹ کا، لیکن وہ انکریمنٹ ان چیزوں میں نہیں ہے کہ جو بندے کے ہاتھ میں ہوتی ہیں جسے ہم نعمت سمجھتے ہیں، بلکہ وہ انکریمنٹ خود انسان کی ذات میں ہے۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نہ کہ وہ نعمتیں جو تمہارے پاس۔ ٹھیک، اور تیسری بات جو سمجھ لیں، پھر میں حدیث کا بیان شروع کرتا ہوں انشاءاللہ، کہ تیسری بات یہ کہ شکر، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صبر کے ارکان ہیں، تین یا چار ارکان ہیں، پلرز ہیں، کہ اگر ان میں سے کوئی بھی مسنگ ہوگا تو انسان پھر صابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے شکر کے بھی ارکان ہیں، تین یا چار۔ شکر کے اندر سب سے پہلا رکن، رکن یعنی پلر، کہ جس پر کوئی چیز کھڑی ہوتی ہے، جو اس کی اساس ہوتی ہے، اس کی فاؤنڈیشن اور بنیاد ہوتی ہے، کہ شکر کے اندر جو پہلی چیز ہے وہ خود نعمت کی معرفت ہے۔ پہلی ریکوائرمنٹ شکر گزاری کے لیے کہ جو نعمت آپ کے ہاتھوں میں ہے اس نعمت کا کی معرفت، اس کو بندہ پہچانے۔ یعنی بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے عام طور سے خدا نے ہمیں ہمارے بدن میں جتنی نعمتیں دی ہیں ہم اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں، استعمال کرتے رہتے ہیں، استعمال کرتے رہتے ہیں، 40-50 سال اس بدن کو ہم یوز کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اس پورے عرصے میں کبھی بھی یہ خیال نہیں آتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو خدا نے ہم کو دی ہے، اور اس کے بارے میں ہم ایک دن بھی ایسا نہیں گزار پاتے کہ ہم واقعاً سجدے میں جا کے اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ اے خدا 50 سال سے میرا دل جو ہے نا بغیر پرابلم کے دھڑک رہا ہے کنٹینیوسلی 24/7، میرے بدن میں خون کی سرکولیشن کنٹینیوسلی جاری ہے بغیر کسی پرابلم کے، کبھی بھی نہیں کرتے۔ احساس کب ہوتا ہے؟ جب خدا نخواستہ اس میں کوئی پرابلم آتی ہے، تب بندے کو پتا چلتا ہے کہ کتنی عظیم نعمت سے ہم استفادہ کر رہے تھے اور احساس بھی نہیں تھا، اور ایک دن بھی دینے والے کے انعام، انہیں عطا کرنے والے کا ایک دن بھی ڈھنگ سے شکر نہیں کیا ہم۔ اور اس کے بعد جو روحانی نعمتیں، عقلانی نعمتیں، وہ تو اس کے بیونڈ ہیں، میں تو خالی بدنی نعمتوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو نعمت کی معرفت، جب تک آپ کے پاس نعمت کی معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک آپ اس کا شکر ادا کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں گے۔ پہلا رکن کہ نعمت کی معرفت ہو، ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہیں، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، میرے سر پر چھت ہے کتنی بڑی نعمت ہے، بدن کا نظام درست چل رہا ہے کتنا بڑا کرم اور فضل ہے خدا کا، نعمت کی معرفت۔ نعمت کی معرفت حاصل ہونے کے بعد شکر کا دوسرا رکن یہ ہے کہ آپ اس نعمت کی حفاظت کریں، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں، اس کو ویسٹ نہ کریں، کیونکہ ان اللہ لا یحب المسرفین، اسراف کس میں ہوتا ہے؟ ویسٹ فلنس کہاں پر ہوتی ہے؟ نعمت میں ہوتی ہے۔ تو انسان جب نعمت کو کی معرفت رکھے گا، نعمت کو پہچانے گا، پراپرلی آئیڈینٹیفائی کرے گا، تو شکر کا دوسرا رکن کیا بنتا ہے؟ کہ انسان نعمت کو ضائع نہ کرے، اس کو پرزرو کرے، اس کی حفاظت کرے۔ اور پرزرو کرنے کے بعد تیسری چیز کیا بنتی ہے؟ کہ انسان پھر اس نعمت کو دوسرے، اس نعمت کی بنیاد پر دوسرے انسانوں کو بھی فائدہ دے، ان کو بھی نعمت کے ثمرات میں، اثرات میں، برکتوں میں شامل اور شریک کرے، خود غرض نہ ہو نعمت کے حوالے سے، بخیل نہ ہو، کنجوس نہ ہو۔ اور چوتھا رکن کیا ہے؟ کہ جو نعمت آپ کے ہاتھ میں ہے اس میں اضافہ کرنے کی एफर्ट करें। यानी अगर खुदा ने आपको नेमत इल्म अता की है, आप उसमें इजाफा करके अपनी अगली नस्ल के हवाले करें। अगर खुदा ने आपको कोई और, यानी जाहिर है कि माल के हवाले से ये चीज थोड़ी सी प्रॉब्लम बन जाती है कि माल जो है ना वो हकीकतन इन्हें नेमत जरूर है, लेकिन नेमत से शायद ज्यादा आजमाइश है। तो और माल के हवाले से प्रॉब्लम ये भी होती है कि उसमें अगर आप ज्यादा इजाफे की सोचते हैं, उसके पीछे ज्यादा जाते हैं, तो इमीडिएटली जो चीज आपका दामन पकड़ लेती है वो दुनिया की जिंदगी में ओवर इन्वॉल्वमेंट है, और ये बजात खुद मोमिन की आखिरत के हवाले से बहुत खतरनाक चीज है। कि शायद मैंने आपको पहले वाकया सुनाया भी था कि रसूल खुदा के एक सहाबी थे, क्योंकि शुरू में तो काफी गरीब थे जो मुसलमान रसूल के पास आते थे, तो वो उनकी गुर्बत को देखकर, नेक इंसान थे, अच्छे इंसान थे, रसूल खुदा उनको पसंद करते थे, उनकी गुर्बत और कसमपुरसी को देखकर रसूल खुदा का दिल कुढ़ता था, आप रंजीदा अफसरदा होते थे। तो एक दिन जबरील अमीन तशरीफ लाए और कहा कि ऐ मोहम्मद, खुदा आपके साथ के हवाले से जो आपके दिल में अफसोस है, खुदा उसको जानता है, देख रहा है, और आप चाहते हैं कि इसकी हालत बदल जाए। उन्होंने, रसूल खुदा ने कहा कि हाँ बेहतर है कि ये खुशहाल हो जाए। उनको 2 दिरहम जबरील ने दिए और कहा कि ये उस साथ को दे दें और उनसे कहें कि इससे कारोबार शुरू करें। रसूल खुदा ने उनको दे दिए वो 2 दिरहम। उन्होंने कारोबार शुरू किया, थोड़े दिनों में, चंद महीनों में या 1 साल के अंदर इतना बड़ा कारोबार हो गया कि मस्जिद नबवी के करीब उन्होंने दुकान बना ली और मतलब अच्छी खासी ट्रेडिंग चल पड़ी। एक दिन रसूल पाक मस्जिद जा रहे थे, देखा कि साद जो हैं वो दुकान पर खड़े हुए हैं अपनी। आपने कहा नमाज का वक्त हो रहा है, तो कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं कैसे आऊं, किस तरीके से करूं, आप मुझे कुछ आ रहा है, जैसे हम आज की जबान में कहें क्लाइंट आ रहे हैं, किसी को देना है सामान, किसी से लेना है। रसूल खुदा ये हाल देखकर बहुत रंजीदा, क्योंकि इस किस्म के वाकयात हमारे पास बहुत हैं कि जैसे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के भी, आपके पास भी एक शख्स आया आपसे इस्तखारा निकलवाया कि मैक्स आपने कहा कि इस्तखारा मना है, वो चला गया। उसके थोड़े दिन बाद फिर आया और कहने लगा कि मैंने आपको पता है कि मैंने किस चीज का आपसे इस्तखारा निकलवाया था, आपने कहा बताओ, तो कहने लगा कि मैं एक अपने कारोबारी सफर पे जाने वाला था, उसका इस्तखारा निकलवाया था, आपने कहा कि मना है, और मैं उस सफर पे गया और बहुत प्रॉफिट कमा के आया। आपने फरमाया कि क्या उस सफर के दौरान तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि एक मौके पर सुबह की नमाज का वक्त निकल गया और तुम पड़े सोते रहे, हालत सफर में तुम्हारी सुबह की नमाज कजा हो गई? उसने कहा जी हाँ ऐसा हुआ था। तो आपने फरमाया कि इसलिए इस्तखारा मनाया था, तुमने उस फजर की नमाज को कजा करके जितना नुकसान उठाया है, तुम्हारा ये दुनिया का इतना प्रॉफिट उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं, कोई इक्वलेंसी नहीं है इसमें, इन इन दोनों के दरमियान कोई इक्वलेंसी नहीं है। तुमने अपने आखिरत के सरमाए में जितनी कमी कर ली उस 2 रकअत नमाज नमाज फजर को कजा करके, तो ये दुनिया का फायदा कोई उसका मुकाबला नहीं है। तो रसूल खुदा दोबारा रंजीदा हो गए और इतना ज्यादा रंजीदा हो गए कि पहले से ज्यादा आपका दिल अफसोस के आलम में आ गया। फिर जबरील अमीन तशरीफ लाते हैं, कहते हैं या मोहम्मद, खुदा तुम्हारे दिल की रंजीदगी से आगाह है, बताओ तुम क्या चाहते हो साथ के बारे में। आपने फरमाया पहली हालत में वापस आ जाए, नहीं नहीं अच्छा ही ये काम कारोबार ये सब नहीं अच्छा। तो जबरील ने कहा कि ठीक है आप उससे वो 2 दिरहम अपने मांग लीजिएगा वापस जो दिए थे। तो जब साद से मुलाकात हुई तो रसूल खुदा ने फरमाया कि साद आप अब माशाल्लाह अब आपका काम कारोबार बहुत इस्टेब्लिश हो गया है, तो मैंने जो आपको 2 दिरहम दिए थे आपका कारोबार शुरू करने के लिए, वो मुझे वापस कर दीजिए। तो कहने लगे, यार रसूल खुदा, आप कहें जितना कहें हाजिर, 2 दिरहम की क्या बात है। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे मेरे 2 दिरहम वापस कर दो। और जब उन्होंने वो रिटर्न किए तो उनका कारोबार डिक्लाइन होना शुरू हुआ और थोड़े दिन बाद वो वापस उसी हालत पे आ गए। तो शायद हमको ये सब बातें अच्छी नहीं लगें, हमको शायद ये सब बातें, क्योंकि हम इस तरीके से, हमारा जो वे ऑफ थिंकिंग है, जो पैटर्न है हमारी सोच का, कि जो बात मैं कई दफा आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूं कि हमारा दीन, और बल्कि मुहर्रम में भी आपने ये जुमला सुना होगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुमला, जो आपका रिवायतों में है कि हुर से बात की थी, बात करते हुए आपने कहा था जब आप वहां से चल रहे थे, हुर के साथ पहली मुलाकात के बाद रवाना हो रहे थे, कि बेशक इंसान जो है अबीदुद दुनिया है, दुनिया के गुलाम है, बंदे नहीं गुलाम है, और दीन उनके मुंह पे लुआब की तरह है, लुआबे दहन की तरह है, कि जिसे वो अपने मुंह में घुमाते रहते हैं तफरी के लिए, मजे के लिए। जब तक उनकी दुनिया में मईशत अच्छी चलती रहती है, वो दीन की बातें कर करके मजे लेते रहते हैं, और जब सच्ची आजमाइश का वक्त आता है तो दयानू, यानी कि सच्चे दीनदार जो हैं, बहुत थोड़े से निकलते हैं। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल है, आप देख लीजिए। आजकल तो बहुत आसान है इन सब अकवाल को चेक करना, और नासो अबीदुद दुनिया। तो हम जैसे लोग भी, जो ज्यादातर हमारी प्रॉब्लम है कि हमारा दीन उस वक्त तक दुरुस्त है जब तक वो हमारी दुनिया की मईशत की फलाह बहबूद की गारंटी ले रहा हो। जहां उसमें मुसीबत आती है, जहां उसमें मुश्किल आती है, तो हम वो शुहदाए करबला की तरह नहीं है कि जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया और उनको परवाह नहीं थी इस बात की कि इमाम हुसैन की नुसरत जो है ना, वो मुझसे दुनिया की हर चीज छीन रही है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी जो थोड़े से लोग आपके साथ थे। तो बहरहाल, इन तमाम चीजों का ताल्लुक सब्र शुक्र से है। यानी करबला के हवाले से भी जो 2 सिफात मोस्टली हमारे सामने आती हैं और हमारे हमें अपनी अहमियत का एहसास दिलाती हैं, वो सब्र शुक्र है। तो शुक्र के अरकान आपको समझ में आ गए कि शुक्र के अरकान और पिलर्स ये हैं कि नेमते खुदा की मारिफत हो, नेमत की हिफाजत हो, नेमत की नर्चरिंग और इजाफा हो, और उसके फयूजात में, उसकी बरकतों में अल्लाह के दूसरे बंदों को शामिल और शरीक किया जाए, न कि इंसान नेमत के बारे में खुदगरज और बखील और कंजूस बन जाए। ये शुक्र है, शुक्र के अरकान। तो इसी तरीके से इस बात को जहन में रखिएगा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ने का नाम नहीं है। बिल्कुल जैसे हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि सब्र किसी कोने में बैठ के मुसीबत बर्दाश्त करने का नाम नहीं है, तो शुक्र भी आप अल्हम्दुलिल्लाह जरूर पढ़िए, मैं उसको मना नहीं कर रहा, लेकिन शुक्र का मतलब यह है कि जब हम ये सारे काम करेंगे, जब इन तमाम उमूर को अंजाम देंगे, तब हम इस लायक और काबिल होंगे कि कहें अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर उस वक्त खुदा हमारी अल्हम्दुलिल्लाह को कबूल करेगा। वरना अगर हम उस किस्म के इंसान हैं, नऊज़ु बिल्लाह, के हम नेमतों को के ऊपर पूरा ताला डाल के बैठे हुए हैं, हमारे इर्द गिर्द, खास तौर से हमारे रिश्तेदारों में लोग जरूरतमंद हैं, मोहताज हैं, परेशान हैं, हमने अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाया हुआ है, हमने एक के बाद 2-3 घर बनाए हुए हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है कि हमारे रिश्तेदारों का क्या हाल है, हमारे दोस्तों में परेशानी है नहीं है, आप जितना दिल चाहे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहिए। कतन कतन ऐसा इंसान शुक्रगुजारों की या इबादे शाकिरीन की फेहरिस्त में नहीं आ सकता है। तो इस बात को जहन में रखना है शुक्र के अरकान हैं, शुक्र के लिए कुछ कायदे और कवानीन। तो मैं आज अब इस हदीस को पढ़ देता हूं और इंशाल्लाह फिर अगली दफा से मैं इस पर इसकी तशरीह की तरफ आऊंगा कि ये 21वीं हदीस है, हदीस नंबर 21 है जो किताब जेल हदीस अरबईन हदीस इमाम खुमैनी में है। और हदीस का टेक्स्ट ये है कि पांचवें इमाम से अबी बसीर रिवायत करते हैं और पांचवें इमाम फरमाते हैं कि एक रात ऐसी थी कि जब रसूल खुदा बीबी आयशा के हुजरे में थे रात गुजारने के लिए, और जब आप वहां यानी कि जब आप अपनी अजवाज के साथ भी रात गुजारते थे तो उसमें रात के अंदर एक अच्छा खासा हिस्सा आपका इबादत खुदावंदी में गुजरता था, अल्लाह की इबादत में गुजरता था। तो उन्होंने जब आपकी इबादत, और सबसे बढ़कर ये कि जैसे रसूल खुदा के बारे में ये कहा जाता है कि आप 70 मरतबा कमो बेश, कम अज कम 70 मरतबा, तो मैं समझता हूँ कि एक वैसे कसरत को बयान करने के लिए एक लफ्ज कह दिया गया, लेकिन रसूल खुदा बकसरत इस्तिग़फार करते थे, बहुत ज्यादा कसरत से खुदा की बारगाह में इस्तिग़फार करते थे। आइम्मा अलैहिस्सलाम की उसमें भी है कि अलअफ़ अलअफ़ अलअफ़, यानी खुदा माफी, तुझसे माफी चाहता हूँ, माफी का तलबगार हूँ, या गफूरो या रहीमो, ये सब कसरत से जिक्र फरमाते थे। हालांकि हमें अजीब लगता है कि मासूमीन है, लेकिन इस कदर खुदा की बारगाह में अफ़ो इस्तग़फार व मग़फ़रत और रहमत खुदा की दरख्वास्त। तो रसूल खुदा कसरत से इस्तग़फार करते थे, कसरत से इबादत अंजाम देते थे, कसरत सुजूद आपकी इबादत में थी, और आहोजारी गिरिया के जैसे लगे कि एक मुजतरब इंसान, एक तड़पता हुआ इंसान। तो उन्होंने इन तमाम चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद कहा रसूल खुदा से कि या रसूल अल्लाह लिमा तुतइब नफ्सका, कि ए रसूल के या रसूल अल्लाह, आप अपने नफ्स को इस कदर ताड़ यानी मशक्कत में क्यों डालते हैं, इतनी सख्ती में क्यों डालते हैं? क्योंकि हम, आप इस बात पे गौर कीजिएगा कि हम जब इबादत अंजाम देते हैं तो बामशक्कत नहीं अंजाम देते। यानी मिसाल के तौर पर कि अगर गर्मी है तो हमारे पास एसी है तो जरूर खोल लेंगे, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि बामशक्कत नहीं करते। या जैसे मिसाल के तौर पर जब हम सजदे में जाते हैं तो सजदे में जाके हमारी कोशिश होती है कि जो मुख्तसर तरीन जिक्र है वो करके सजदे से सर उठा लें, जबकि मुस्तहिब क्या है कि इवन आप सुबहान रब्बी अलआला व बिहम्दही भी है तो 3 मरतबा कहें, 3 से ज्यादा मरतबा कहें, उसके कसरत जिक्र पर कोई पाबंदी नहीं। कि हम इस बारे में इन्हें बिल्कुल मशक्कत नहीं उठाते, बिल्कुल एफर्ट नहीं करते आमतौर से, खुदा सबको तौफीक दे, मैं वैसे नहीं जनरल बात कर रहा कि आप में से यकीनन ऐसे मोमिनीन होंगे कि जो इस हवाले से मुतवज्जे होंगे, तो आप अपने नफ्स को इतनी मशक्कत में क्यों डालते हैं? जबकि अल्लाह ने आपके पिछले और अगले गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी है। ये जुमला बना दे खुद तफसील तलब है, तशरी तलब है कि ये अगले गुनाह पिछले गुनाह इससे मतलब क्या है, मैं भी खाली तर्जुमे की हद तक बात कर रहा हूँ। अच्छा, इससे भी देखिए एक बात समझ में आती है, मैं यहाँ एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज करूँ कि जब हम बहुत सारी रिवायात पढ़ते हैं, बहुत सारी अहादीस और रिवायात को जब हम मुलाहिजा करते हैं तो हमें एक अजीब बात महसूस होती है कि वो अफराद जो रसूल के और इमाम के नज़दीक थे, आपके असहाब के हवाले से मशहूर हैं और या अजवाज हैं, उनके सवालात बाज़ औक़ात देखकर उस पर थोड़ी हैरानी होती है, और हैरानी इस बिना पर होती है कि यानी आपको वाज़े तौर से लगता है कि यहां पर मारिफत की एक कमी झलक रही है। آپ اپنے نفس کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں جبکہ خدا نے آپ کی مغفرت کر دی ہے، جبکہ خدا نے آپ کو گارنٹی دے دی ہے کہ آپ مغفرت یافتہ ہیں. یعنی اس میں اس کے پیچھے تھنکنگ پروسیس کیا ہے، اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ انسان عبادت اس لیے کرے یا اس حد تک کرے کہ اس کی مغفرت ہو جائے، خدا اسے معاف کر دے، اس کو جنت دے دے. یعنی وہ جو ایک کنسیپٹ ہے کہ جو امام علی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ہم خدا کی عبادت جنت اور جہنم دونوں سے بے نیاز ہو کے کرتے ہیں، کہ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کو لائق بندگی یعنی لائق شکریہ سمجھ کر، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس کی نعمتوں کے سامنے سر جھکانے کے لیے، کہ اس کی نعمتوں کے شکر کے حوالے سے سر جھکانے کے لیے، اس بنا پر عبادت ہم انجام دے رہے تھے. تو اب یہ کہ جنت جہنم انسان جیسے زیادہ تر مسلمین و مومنین جنت جہنم میں ہی پھنسے ہوئے، تو یہ ایک تھوڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ مطلب آپ اگر مغفرت یافتہ ہو گئے تو مغفرت یافتہ ہونے کا مطلب ہے کہ اب آپ آرام آرام سے چلیں، ٹھیک ہے جنت تو ہو گئی آپ کے اکاؤنٹ میں، تو آ گئی جنت. صحیح. اچھا اب رسول خدا نے جو جواب دیا نا وہ بالکل اسی لائن کا ہی جواب ہے کہ عبادت خالی اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ انسان جنت لے لے یا جہنم سے بچ جائے. آپ نے فرمایا یا عائشہ الا اکون عبدا شکورا. شکور کے جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بہت زیادہ شکر گزار. یہاں پر انہوں نے ترجمہ جو اردو میں لکھا ہے کہ کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اس میں تھوڑا سا نقص ہے اس ترجمے میں. تو یہ ترجمہ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے اس میں تھوڑا سا وہ تبدیل کیا تھا کہ کیا میں بہت شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں. شکور یعنی بہت، جو بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہے، شکر جس کی صفت ہوتی ہے، شکر گزاری جس کی کوالٹی ہوتی ہے. کیا میں عبد شکور نہ بنوں؟ عبد اور شکور یعنی بندہ خدا، اور کیسا بندہ خدا؟ جو بہت زیادہ شکر گزار ہو. کیا میں یہ نہ بنوں؟ میری عبادت اس لیے نہیں ہے جو آپ جس لحاظ سے سوچ رہی ہیں. تو یہ جو بھی مشقت ہے، یعنی کہ پھر عبد شکور شکر گزار بندہ اس حوالے سے سوچتا ہے، اس کی یہ فکر ہوتی ہے کہ جس رب نے اس قدر عظیم نعمتیں میرے سامنے میرے ہاتھ میں دے دی ہیں، مجھ سے کچھ نہیں مانگا ہے، مجھ سے کچھ نہیں چاہا، ساری نعمتیں مفت ہیں خدا کی، قیمت لوگ وصول کرتے ہیں نعمتوں کے لیے، خدا نے نہیں وصول کیے کوئی قیمت ہم سے کسی بھی نعمت کے حوالے سے. تو بندے کا دل نہیں چاہتا کہ میں اس رب کے لیے تھوڑی سی مشقت یعنی تکلیف، اور یہ تکلیف بھی بربنائے محبت ہے، کہ جس طریقے سے کہ ماں رات جاگتی ہے تو یہ جاگنا جو ہے بچے کے لیے یہ محبت ہے، یہ بربنائے محبت ہے کہ جو یہ راتوں کا جاگنا ہے اور تکلیفیں اٹھانا ہے، مشقتیں برداشت کرتی. تو اسی طریقے سے جو یہ مشقت ہے یہ کیا ہے؟ یہ محبت خدا کے حوالے سے، شکریہ کے لیے. اور پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ يَقُومُ عَلَىٰ اَطْرَافِ اَصَابِعْ رِجْلَيْهِ. آپ اپنے پیروں کی انگلیوں کے بل کھڑے ہو کر حالت قیام میں رہتے تھے، عبادت میں، نمازوں میں. یعنی قیام جب آپ کرتے تھے تو ہم تو پورے تلوے کے ساتھ پورے پیر پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، آپ اپنے پیروں کی انگلیوں کے بل کھڑے ہو کے قیام، طویل قیام فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پیروں پر ورم آ گیا. یہ روایت کے جملے نہیں، یہاں تک کہ آپ کے پیروں پر ورم آ گیا. تو پھر خدا نے سورہ طہٰ اور اس کی شروع کی جو آیتیں نازل فرمائیں کہ طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ اے طہٰ हमने कुरान इसलिए नहीं नाजिल किया कि आप इस कदर मशक्कत बर्दाश्त करें और अपने को मशक्कत में डालें। तो इंशाअल्लाह अगली दफा फिर इस हदीस की जो बयान किया है और इसमें जो आगा ने आग खुमैनी ने जो जिस तरीके से तशरीह की है तो उसमें उस जुमले को भी काफी एक्सप्लेन किया है कि जो पहला जुमला है जो बज़ाहिर शुक्र नहीं है, शुक्र के उससे मुताल्लिक नहीं है कि जिसमें यह चीज मौजूद है कि खुदा ने आपके अगले और पिछले गुनाहों को मग़फ़रत कर दिए, उसको भी आपने काफी एक्सप्लेन किया है। तो इंशाअल्लाह उसका भी तذکرہ करते हुए और फिर हम इस हदीस की तफसील से तशरीह का जायजा लेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरी गुफ्तगू यहाँ पे आज की हद तक तमाम होती है। आप हजरात अगर कुछ पूछना चाहें, सवाल करना चाहें तो बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ल अला मुहम्मदिन व आल मुहम्मद। ये एक सवाल मुझे नजर आ रहा है कि कोई इंसान शुक्र कैसे करता है फॉर इंक्रीज ऑफ नॉलेज। तो वही बात जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की थी ना कि चार अरकान वही चीज है कि चार अरकान जो हैं कि पहले आप नेमत इल्म के कदरदान हो, इल्म की नेमत की मारिफत हासिल करें, उस नेमत की हिफाजत करें यानी इल्म जाया ना करें। इल्म जाया ना करने के दो एस्पेक्ट होते हैं। पहला एस्पेक्ट ये होता है कि जो इल्म आपने हासिल किया है उसको याद रखें, और दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि जो इल्म आपने हासिल किया है उस पर अमल करें। तो इस तरीके से इल्म की हिफाजत होती है। और जब आप ये दो काम करेंगे और तीसरा काम आप ये करेंगे कि उस इल्म के फ़ुयूज़ात में दूसरे इंसानों को भी शरीक करेंगे, इल्म की बरकतों में दूसरे इंसानों को भी शामिल करेंगे, तो यकीनन फिर खुदा वो इल्म का खजाना जो आपकी ज़ात में है उसमें इजाफा और ज्यादती करता चला जाएगा। तो इस तरीके से है इसमें इल्म में ज्यादती। जी जरूर अली असलम साहब फरमाइए। जी जी
जी अस्सलाम वालेकुम। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये जो बहुत कॉमनली मेंशन किया जाता है और काफ़ी तंजिया तौर पे और सार्केस्टिकली ही कहा जाता है और वाकई इंसल्टिंग भी लगता है कि जन्नत में 70 हूरें मिलेंगी और दूध की नहरें बहरी होंगी और ऐसी हूरें होंगी और वैसी हूरें होंगी। ये सुन के भी काफी शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमें इतनी एक तरह से मतलब मैं अपनी नजरों में मुझे ये फील होता है कि जी कि हम इतने वो हैं, इतने लालची हैं कि हमें कोई अच्छी अच्छी चीज की तरगीब देने के लिए, हमारी तरबियत के लिए हमें ऐसी मटेरियलिस्टिक चीजों की एग्जाम्पल दी जाती हैं। तो ये कहाँ तक सही है और क्या ये अगेन तर्जुमे की गलतियां हैं जो इतनी कॉमनली अब हर जगह बयान होती है? शुक्रिया।
नहीं, इसमें देखें ये तो एम्फेसिस की बात है ना। जैसे मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया कि ज्यादातर जोर कहाँ पर है कि आपको जन्नत मिल जाए, लेकिन जो मासूम हैं वो उसको हमेशा फोकस किस तरफ ले जाते हैं? वो इस तरफ ले जाते हैं कि तुम्हें अपने मेयार को बुलंद करके एक आजाद और हुर के तरीके से, हुर्रियत वाले इंसान के तरीके से जिंदगी गुजारना। जैसे आप लोगों ने अभी देखे ना मुहर्रम में, तो ये बहुत बातें ऐसी होती हैं कि ये एक जुमला बड़े ही बहुत ही गोल्डन वर्ड्स हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, कि जब बिल्कुल आपकी शहादत से थोड़ी देर पहले का वाकया है कि जब आपके और खयाम के खेमों के दरमियान ये लोग घायल हो गए थे, सब ने आपको घेर लिया था चारों तरफ से और आपको खेमे नजर नहीं आ रहे थे और आपको ये महसूस हुआ कि कुछ लोग खेमों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उस वक्त आपने उनसे जितनी आप में ताकत थी आपने पुकार के कहा था कि इन लम यकुन दीनकुम, अगर तुम्हारे पास दीन नहीं है, अगर तुम्हारे पास खौफ आखिरत नहीं है, तो कम से कम अहरार तो बनो, आजाद इंसान तो बनो, इंसानियत तो तुम्हारे अंदर। तुम्हारी जंग मुझसे, तुम्हें औरतों और बच्चों से क्या लेना। सही। तो ये जो चीज है ना कि ये इमाम अलैहिस्सलाम और आइम्मा ताहिरीन और रसूल पाक की तरफ से ये बड़ी कॉमन थीम है कि हमें इनसे बाहर निकालना है। ठीक है, ये एक बात है, जोर इस जगह पर। अच्छा, अब रही वो बात कि क्या वो सिरे से गलत है? नहीं, गलत नहीं, क्योंकि जो नेमतें आपको के अल्लाह अल्लाह ने हमें दुनिया में इनकरेज किया है कि हम मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पर ऊपर से ऊपर जाएं, हमें खुदा ने इस बात में इनकरेज नहीं किया है कि हम जो है ना वो मादी एतबार से ज्यादा आगे, इस पे खुदा ने इनकरेज नहीं किया है। अकली और रूहानी मेयार बढ़ाने की तरफ बहुत ज्यादा तरक्की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मादी एतबार से आप कुछ नेमत ना लें, इस्तफादे ना करें या लज्जतें ना हो। नहीं, खुदा ने वो लज्जतें भी इनायत की हैं, लेकिन वो लज्जतें वो हैं कि जो आपको खुद ही आपकी खिदमत में हाजिर हो जाती। तो इसी तरीके से जो बेहिश्त है, कि जैसे आयतुल्लाह जवादी आमली का बहुत अच्छा जुमला है ये, कि बेहिश्त जो है वो मोमिन के नूर से रोशन होती है और मोमिन की मुश्ताक होती है। बेहिश्त को मोमिन का शौक है, मोमिन को खुदा का शौक होना चाहिए। ये है बात असल। जी असवर साहब, बात कुछ वाजे भी?
जी जी बहुत शुक्रिया
तो उसकी
आगाह
नफी नहीं
किया।
है, नफी नहीं है उसकी, हूर और कसूर और जो भी है, लेकिन वो मोमिन का मतलूब और मकसूद नहीं।
लेकिन आपकी बात से ये मुझे ये चीज समझ में आई कि आइम्मा की तालीमात की प्रीचिंग हमारी हम तक नहीं पहुंचती अनफॉर्चुनेटली, और हमें
जी
मेटीरियलिस्टिक चीजें ही दिखाई जाती हैं कोई आला मुकाम हासिल करने के लिए सिर्फ, और
हाँ,
जन्नत के
देखिए
हवाले से
देखिए
नहीं।
देखिए, मैं आपको एक सादा सी बात बता दूं कि मैं जिस मेयार का इंसान हूं ना, उस मेयार से बुलंद बात आपसे कर नहीं पाऊंगा। बस एक जुमले में बहुत कुछ पोशीदा है, समझ रहे हैं? तो
जी बहुत
हमेशा
बहुत अच्छी तरह से आपने एक ही जुमले में
जी
एक्सप्लेन कर दिया, बहुत
जी
शुक्रिया।
जी 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 तो अब जहरा अस्जद साहिबा जी, फरमाइए।
हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
मुझसे टॉपिक से हटके मेरे एक दो बातें पूछनी है, क्योंकि सबसे पहले ये कि जो हम अपना कफन रखते हैं अपने पास, तो मुझे किसी ने कहा, लेकिन मैंने ना अब तक सुना था ना किसी को पहने देखा है। एक मोहतरमा मुझे मिली, मुझे जिसमें वो मुझसे कहने लगी कि ना कफन पहन के नमाज पढ़े तो बहुत सवाब होता है, और फिर उसको बाद में कफन आप जब मरे तो आप वो पहन लें। तो क्या आया ये बात सही है?
देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। असल मसला जो यहाँ पर है वो ये है कि इंसान हमेशा मौत को याद रखे,
जी
ठीक है, कि इसमें कोई वो बात नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा कि हम खाली अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहें, लेकिन जो शुक्र के जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें से एक भी पूरी ना करें
जी
तो उसका कोई फायदा नहीं है ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का। इसी तरीके से हम कफन पहन लें, ओढ़ लें, कुछ भी कर लें, कब्र में लेट जाए जाके, लेकिन मौत को याद रखने के तकाजे हैं। और मौत को याद रखने का सबसे पहला तकाजा यह है कि इंसान दुनिया से अपने दिल को हटाए।
जी
वो होता है, अगर वो
जी
नहीं होता तो फिर कुछ भी करते हैं।
लेकिन
ये
फिर कोई
इस
हर्ज
किस्म की बात जो करते हैं वो इसलिए करते हैं कि मौत को इंसान हमेशा याद रखे। जी
जी अच्छा, और दूसरा ये सवाल है कि आजकल मुख्तलिफ वीडियोस आ रही हैं फेसबुक पे मातम के सिलसिले में। अब मेरे अपने खुद भी नहीं समझ में आता कि किस टाइप के मातम हो रहे हैं, कि आप ये देखें मटका सर पे तोड़ के हो सक आपके पास भी मिल हो सकता है, आई हो ये वीडियो
जी,
मटका सर्कल,
मैं ऐसी चीजों से वैसे दूरी रहने की कोशिश करता हूँ।
और वो अलम। अच्छा एक बात, सॉरी दूसरे सवाल ये कर रही हूँ कि ये बात अभी तक लोगों की कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं हो रही है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं क्लियर है कि आया जनाबे कासिम की शादी जो है वो हुई थी कि नहीं हुई थी। और फिर वो एक वीडियो इस पे भी चली है कि उन्होंने मेहंदी निकाली है, ये सब है। मुझे पर्सनली बहुत दुख सा होता है,
अच्छा,
पता नहीं
मैं ये एक सवाल पूछता हूं कि जो लोग भी शादी की बात करते हैं कि जनाबे कासिम का कितना सन था करबला में?
13 साल का।
13 साल का। और ये पूछ लिया करें कि सन कितना था, तो 13 साल का लड़का बालिग तो नहीं होता ना?
वही ना, तो असल में
तो
सन्ना
तब
से
उसमें तो अब उसमें ये है कि अब पता नहीं अब क्या कह सकते हैं। देखिए, इसमें रिवायात में बहुत सारे, लेकिन अगर हुई या ना हुई तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है?
यही ना। अच्छा अब वो लोगों ने, अब आजकल आपको पता है लोगों का माइंड ही बहुत डिफरेंट हो गया है, जो हम अपने बचपन से सुनते करते चलाए, अब वो मेहंदी निकल रही है तो वो बाकायदा जोड़े सज रहे हैं। आप मतलब कहीं कहीं तो कभी कभी इतनी उलझन होती है कि आया हमारे मजहब को इतना क्यों खराब किया
जी,
जा
ये
रहा है।
सब अफसोसनाक बातें हैं। और एक बात बिल्कुल तयशुदा है कि हमने खुद और हमारे साथ जो लोग थे उन्होंने इस बात पर मेहनत कम की है या नहीं की कि कुरान और अहले बैत की सही तालीमात को लोगों के सामने लाया जाए, जिसका आज हमने ये नतीजा देखा है। जब तक लोग किताबे खुदा से करीब नहीं होंगे, जब तक लोग हकीकतन तालीम अहले बैत से नजदीक नहीं होंगे, यही सब चलती रहेंगी बातें। तो
आप
ये भी
मुझे
एक
कुछ
लिहाज से
बताओ।
नेचुरल है, ये भी एक लिहाज से नेचुरल है कि जहां पर लोगों की तरबियत नहीं होती सही लाइंस पर, सही गाइडलाइंस पर, तो हर किस्म के फितने फसाद वहां पे पैदा
स्पेशली
होते हैं।
फी जमाना तो बहुत ही फितना फसाद फैल रहा है।
जी,
मेरी
खुदा
ये
रहम
रिक्वेस्ट
करे।
है कि आप सब मौलाना जाकिर सब मिलके इस मसले को किसी तरह हल करें कि ये जो बेजा काम हो रहे हैं कि आप मेहंदी निकाल रहे हैं, तो आप प्रॉपर जैसे आप अपने घरों में शादियां करते हैं आप मेहंदी निकालते हैं करते हैं, उसी तरह आप मजलिसों में निकाल रहे हैं। तो वो मजलिस का कौन, मैं अपने पर्सनली कहती हूँ मुझे तो रोना भी नहीं आता, मैं कहती हूँ ये कौन सा तरीका है। मौला ने अगर शादी की,
जी,
अगर
मैं
ये
जरा
भी
दूसरे सवाल सुन लूं।
जी
आपकी
जी
बात
थैंक
दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है। जी यकीनन यकीनन जी,
यू।
बतूल साहिबा।
अस्सलाम
जी, वालेकुम अस्सलाम।
वालेकुम, आपके दर्स बहुत बेहतरीन है, हमने आपका अश्रा भी सुन रहे हैं हम, जो अभी आपकी वेबसाइट से मिला था। माशाल्लाह
जी
बहुत हिदायत मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सवाल अभी ये है कि हमें कैसे मालूम हो कि हमारा इल्म अब इस लेवल पे है कि हमें अब दूसरों से शेयर करना चाहिए, और दूसरा अपना व्हाट्सएप नंबर प्लीज अगर दे दें।
अच्छा, ये इसमें तो कुछ भी नहीं है, इंसान को कोई अल्लामा बनने की जरूरत नहीं है। आपको जो चीज भी अच्छी आती हो, यानी मिसाल के तौर पर आपको अगर एक अच्छा खाना भी पकाना आता है ना, आप उस हवाले से भी कि इस नीयत से कि भाई चलो किसी मोमिन के लिए एक लज्जत में इजाफा हो जाएगा, ये भी अच्छी शेयरिंग है। आपको एक छोटी सी स्किल आती है, कोई छोटी से एक नुक्ता आता है, कोई टोटका आता है कि जिससे आपको पता है कि कोई फायदा होता है, तो ये तमाम की तमाम बातें जो है ना, तो इसमें यानी खुदा ये कहता है कि जो भी मोमिन माशरा है उसमें तमाम लोगों को एक दूसरे का खैरखा होना चाहिए, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचने वाला होना चाहिए और एक दूसरे की अच्छाई में कंट्रीब्यूट करने वाला होना चाहिए। ये अंडरलाइन थॉट है। और फिर उसमें कि जितना जितना इंसान इस लैडर पर, इस लेवल पर ऊपर जाता जाए कि छोटा सा इल्म, छोटी सी स्किल, फिर ज्यादा ज्यादा ज्यादा, कि अगर आपके पास तौफीक है तो फिर आप लोगों को जमा करें और उसमें उनको तरबियत करें। क्योंकि जैसे अभी भी मोहतरमा बात कर रही थी ना कि असल फकदान तरबियत है। अगर ये तरबियत हो जाए और जो भी हजरात बात कर रहे हैं मेंबर से या उससे, वो उसको अच्छे तरीके से लोगों की तरबियत करें, तो इंशाल्लाह ये मामला खुद ही ختم ہو جائیں گے بہت سارے. یعنی جیسے ایران میں انقلاب کے بعد یہی ہوا ہے کہ وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ امام خمینی یا دوسرے جو علماء تھے وہ جا کے لڑنا شروع ہو گئے لوگوں سے کہ تم یہ رسمیں کیوں کرتے ہو, فلاں کیوں کرتے ہو, یہ کیوں کرتے ہو, بلکہ انہوں نے کہا کہ ایک تو پہلے ہی جو بنیادیں تھیں وہ بڑی اچھی تھیں, اور اس کے بعد انہوں نے جس چیز کو رائج کیا, دعائے کمیل کو رائج کیا, نماز جمعہ کو رائج کیا, اس قسم کی عبادات کے سارے چیزوں کو رائج کیا, لوگوں کو خود ہی بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی کہ صحیح کیا غلط کیا.
جی اگر ہم ظاہر اپنی فیملی سے شروع کرتے ہیں, اپنے بچوں کی تربیت میں بہتری لاتے ہیں, اپنے ہسبینڈ کے ظاہر رول پلے کر سکتے ہیں, 41 اور 24 ایئر آف میرج, تو اس ٹائم پہ آ کے آپ اس قابل ہو جاتے ہو کہ آپ ہسبینڈ کی بھی تربیت میں حصہ ڈال سکتے ہو, تو پہلا قدم تو یہ ہوگا نا. اور اگر آپ کو لگے کہ آپ یہاں پہ ہی اس لیول پہ نہیں آ رہے, کامیاب نہیں ہو پا رہے, کیونکہ جب آپ دوسروں کو بتانے جاؤ گے اگلے کہیں گے پہلے اپنی فیملی, بولتے ہیں لوگ بلکہ,
ہاں فیملی بھی ہوتی ہے لیکن اکثر اوقات یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز آپ کی فیملی میں ہی ہو جائے. تو یہ کوئی ریسٹرکٹ نہیں کیا ہے خدا نے کہ آپ اپنی فیملی سے آگے نہ جائیں, یا جب تک فیملی کو صحیح نہ کر لیں تو کسی اور سے بات نہ کریں, ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جیسے آپ دیکھیں نا کہ رسول خدا نے اپنے خاندان کو مثال بنایا ہے, اپنے اہل بیت کو لوگوں کے لیے نمونہ بنایا, تو یہ بات درست ہے کہ آپ اپنے گھر پہ کریں, گھر پہ بہت زیادہ محنت کریں کریں, لیکن یہ کوئی ریسٹرکشن نہیں, یہاں پر آپ کی محدودیت نہیں. جی
جی جی جزاک اللہ. اور نمبر پلیز.
جی وہ پھر مبشر بھائی میرا خیال ہے کر سکتے ہیں. جی
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
آغا آپ کے ٹاپک سے ہٹ کے سوال ہے کہ جیسے ہم امام چھٹے امام نے جو سلام بھیجا زیارت وارثہ میں یا دیگر معصوم, ایک معصوم جب دوسرے معصوم کو سلام بھیجتا ہے اور سلام سے مراد سلامتی ہوتی ہے, تو اور یہ ایک طریقے سے دعا ہے, تو جب ایک معصوم دوسرے معصوم کے لیے سلام بھیج رہا ہے تو اس سے کیا کیا کوئی درجات بلند ہوتے ہیں یا اس کے معنی کیا ہیں؟
ہاں سلام کا ایک معنی سلامتی بھی ہے, اور سلام جیسے آپ نے دیکھیں یہ جو سلام ہے نا یہ اس میں خداوندی ہے, یا سلاموں پڑھتے ہیں نا اس میں خدا ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی اس میں خدا کے حوالے سے کسی کو دعا دیتے ہیں یا کسی کو پکارتے ہیں تو اس کے اندر اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس اسم کی جو بھی برکتیں خدا کی طرف سے نازل ہوتی ہیں وہ اس انسان کو ملے. تو اس کے اندر جو گہرائیاں اور معنویت ہیں, ظاہر ہے کہ میرا دماغ تو وہاں تک نہیں جا سکتا کہ اگر ایک معصوم دوسرے معصوم کو سلام کرتا ہے اور اس اسم خدا کو یوز کرتا ہے تو حقیقتاً وہ کس طریقے سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے, لیکن یہی بات ہے کہ اس میں کہ خدا کی طرف سے یا خدا کی بارگاہ سے اس میں سلام کی ساری برکتیں آپ کے حصے میں ہیں.
اور آغا جو پروردگار عالم یہ فرما رہے ہیں اللہ ملائکہ تصلون علیہ, درود کا جو یہ حکم دے رہا ہے کہ پروردگار بھی درود بھیجتا ہے, تو رحمت نازل ہوتی ہے آئمہ اطہار محمد والے محمد پہ, تو وہ کس طرح کی رحمت ہوتی ہے؟
تقرب میں اضافہ ہوتا ہے,
تو وہ تو آلریڈی جو آئمہ اہل بیت ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہیں, تو پھر کس طرح سے؟
لیکن کوئی بھی انسان, اگر خود امام علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ انسان جتنا بھی بلند ہو جائے خدا کے مقابلے میں ہمیشہ کچھ نہیں ہے.
جی
یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ آپ اگر ایک گلاس کے پانی کو لیں اور سمندر کے پانی کو لیں, ان دونوں کا کوئی کمپیریزن ہے؟ ایک گلاس کے پانی کا اور سات سمندروں کے پانی کا
کمپیریزن نہیں
نہیں ہے نا. اگر آپ ایک گلاس کے پانی کو دیکھیں گے اور اس کے مقابلے میں ساتوں سمندر کے پانیوں کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ وہ اس کے مقابلے میں انفینٹ ہے, لامحدود ہے, کہیں گے نا.
جی
لیکن کیا جو ساتوں سمندر کے پانی کو آپ ملا لیں کیا وہ واقعی انفینٹ ہے؟ انفینٹ تو نہیں ہے نا, لامحدود تو نہیں ہے.
نہیں
उसकी भी बहरहाल एक हद है ना। तो इसी तरीके से जब हमारे मुकाबले में मासूम को देखा जाता है या हमारा तो हमारा कंपैरिजन नहीं है उसे, हमारी उनके सिफात का और उसका, क्योंकि हमने अपने आप को बहुत खराब कर लिया है। अगरचे कि हम भी बुलंद हो सकते थे, हम भी बुलंद हो सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया अपने आप को बुलंद, हमने उन मकामात को तय नहीं किया। तो हमारे मुकाबले में, लेकिन खुदा के मुकाबले में थोड़ी। तो ये खुद मासूम के अपने जुमले हैं, अगर आप उनकी दुआओं को पढ़ लें, दुआए कुमैल को पढ़ लें, दुआए इफ्तिताह को पढ़ लें, तो आप देखें कि मासूम किस तरीके से खुदा की बारगाह में हाजिर होते हैं, किस तरीके से खुदा से हम कलाम होते हैं। तो हर इंसान के लिए ये जो सफर है ना खुदा की तरफ सफर, ये किसी भी इंसान के लिए कभी खत्म होने वाला नहीं। तो कुर्बत में इजाफा हर एक के लिए है और होता रहेगा, उनके लिए भी होता रहेगा।
जी आगा, बहुत बहुत शुक्रिया
जी। सारिम सारिम हैदर साहब
जी आगा, मुझे आपसे एक ये सवाल करना है कि हम अपने इल्म की हिफाजत कैसे कर सकते हैं।
इल्म की हिफाजत करने का असल जो, जैसे मैंने पहले भी बताया था शुरू में, कि दो तरीके होते हैं कि एक तो ये कि इल्म इंसान भूले नहीं, फरामोश नहीं करे, और इल्म को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप अपने इल्म पर अमल करें, और दूसरा तरीका ये होता है कि उस इल्म को दूसरों को सिखाएं, उस इल्म को इस्तेमाल करते हुए दूसरे इंसानों की तरबियत करें, तो आपका इल्म महफूज भी रहता है और उसमें इजाफा भी होता है। और तीसरी सबसे खास बात यह है कि जो आपका इल्म है उसके अगेंस्ट या उसके मुखालिफ अमल ना करें अपनी जिंदगी में, वरना वो इल्म यकीनन जाया हो जाए।
और मौलाना मुझे आपसे ये भी सवाल है, मैं अपने आप को नमाज का पाबंद कैसे बनाऊं, कि जैसे मुझे किसी कोई एक नमाज छूट जाती है,
देखिए अब जाहिर है कि यहाँ पर इंसान का जो इरादा है, यानी जो इरादा और नीयत है, वो डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और इसमें नमाज की पाबंदी करने का जो कई तरीके बयान किए गए कि आप किसी भी नमाज का वक्त आने से पहले, आने के बाद नहीं, नमाज का वक्त आने से पहले उसकी तैयारी में मशगूल।
और मैं भी 10 साल का हूँ और मुझे आलिम बनने का बहुत शौक है, तो मुझे कैसे पता चल सकता है कि मेरा अभी इल्म इतना है तो मैं आगे आगे ऐसे ईरान इराक पढ़ने जा सकता हूँ।
नहीं देखें, इसमें जो है ना सबसे पहली बात यह है कि ईरान इराक जाना अच्छी बात है, लेकिन हकीकतन इल्म जो है वो इंसान के दिल में अल्लाह की तरफ से आता है। तो आप सबसे पहले अपने को कोशिश करें अल्लाह का अच्छा और नेक बंदा बनाने की, तो अल्लाह ताला खुद आपकी रहनुमाई करेगा और खुद आपके रास्ते बनाएगा। क्योंकि जैसे रसूल ने बयान फरमाया है कि जो लोग इल्म के रास्ते में आगे आना चाहते हैं, फरिश्ते उनको अपने परों पर उठाते हैं। तो ये सारे के सारे इंतजाम अल्लाह की तरफ से मौजूद हैं, बस हमें इस बात की जरूरत है कि हम उस रिक्वायरमेंट को पूरी करें, अल्लाह का नेक सच्चा अच्छा बंदा बनने की एफर्ट करें, बाकी खुदा आपके सारे काम आसान कर देगा इंशाअल्लाह। ठीक, जी। और अगला जी बतूल, बतूल
जी। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई।
वालेकुम अस्सलाम जी।
हैदर भाई, मेरा जो सवाल थोड़ा रिलेटेड तो आपके टॉपिक से तो नहीं है, बट ये है कि जो रिस्पेक्ट इस्लाम ने औरत को दी थी जी, वो आज मुस्लिम कम्युनिटी में प्रैक्टिकली नजर नहीं आती है। इसकी वजह क्या है, कहाँ हमसे मिस्टेक हुई है, क्या गैप है जो 1400-1500 साल में हुआ जिससे आज औरत कि वो रिस्पेक्ट नहीं है माशरे में, हमारी इवन मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं है?
वैसे तो कहीं भी नहीं है।
हाँ वो तो ठीक है,
वो तो कहीं भी नहीं है,
मगर
और उसकी बहुत बड़ी वजह जो है, पता नहीं आपको मेरा जवाब अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन उसकी बहुत बड़ी वजह औरत खुद है, और औरत खुद होने के दो मसाइल हैं जो बहुत ज्यादा फील होते हैं उसमें। एक बात यह है कि औरत खुद अपने उस कमाल को पहचानने, रिकग्नाइज करने और उसको प्रैक्टिस में लाने के पर आमादा और तैयार नहीं होती है जो खुदा ने उसके अंदर रखा है, और वो हमेशा इस बात की तरफ ज्यादा मुतवज्जे होती है कि मैं मर्दों जैसे काम करूं, जबकि खुदा ने इस बात को वाज़े तौर से बयान कर दिया है कि मर्द और औरत दो, यानी इंसानियत के अंदर जो ये दो स्ट्रीम्स हैं, और दोनों का अपना अपना रोल और काम, ना ये उनका कर सकते हैं ना वो उनका कर सकते हैं। तो एक तो मुझे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम फील होती कि यानी कि अगर हम जैसे जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी को देखें तो खास तौर से वहां पर जो हमें एक बात नजर आती है कि औरत जो है वो बाकायदा पूरे खानदान की बुनियाद होती है, फैमिली की बुनियाद होती है, ये पूरा का पूरा जो जिंदगी का निज़ाम खड़ा होता है वो औरत की बरकत से खड़ा होता है, औरत उस जगह पे अपना रोल ही नहीं प्ले करना चाहती। तो ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा उसूल है कि जब तक कोई कोई भी इंसान उस रस्ते में अपने आप को डिवोट नहीं करता जिस मकसद के लिए खुदा ने उसको पैदा किया था, तो उसको इज्जत नहीं मिलती जिंदगी में। ये जिंदगी का उसूल है, ये मर्द औरत हर एक पर अप्लाई होता है। ठीक है, एक ये प्रॉब्लम मुझे दिखती है, और दूसरी प्रॉब्लम मुझे ये दिखती है खास तौर से हमारे मुसलमान माशरों में कि औरत खुद औरत का रास्ता बहुत ज्यादा रोकती है ड्यू टू जेलसी ऑफ डिफरेंट सॉर्ट्स। मेरे जो तजुर्बा है उसमें ज्यादातर केसेस में मतलब औरतें औरतों के, अभी मेरे सामने एक मसला है मतलब कि वो करके ले गई एक गरीब घराने की लड़की से शादी की, एक साल के बाद मुख्तलिफ इल्जाम वगैरह लगा के कि नहीं मुझे बेटे की, क्यों? सिर्फ इसलिए कि भाई जो लड़की की माँ है, लड़की की माँ है वो बेवा है, वो उस तरीके से पैसे नहीं दे सकती, वो अपनी बेटी को वो सब नहीं कर सकती, उसका खुद खर्चा चलाना मुश्किल है। तो सास साहिबा ने एक साल में फारिग कर दिया, इसको जर्रा बराबर भी उनको दुख नहीं हुआ कि मैं क्या हरकत करूँ। तो ये दो वजूहात मुझे लगती हैं कि जो बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं औरत के मसाइल।
बिल्कुल ठीक है, मगर आपने जो दोनों जवाब दिए वो मैं एग्री करती हूँ उससे, मगर औरत को माहौल कौन बना के देगा? क्योंकि हमारे माशरे में औरत इतनी पस्त हो चुकी है कि उसको घर की लीडरशिप लेने के लिए भी, आपको पता है कि किस तरह औरत स्ट्रगल कर रही है घर में। जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जैसे मैं काम भी कर रही हूँ सोशल सर्विस का, तो मर्द औरत को इस तरह मीन्स अब्यूज औरत हो रही है किसी भी सेंस में, चाहे वो साइकोलॉजिकल फाइनेंशली हो या फिजिकल हो। वो माशरा जो मर्द के हाथ में है वो औरत को नौकरानी से दर्जा ही ऊपर नहीं दे रहा कि वो बेचारी अपने उस स्टेटस को, जो कि आपके
हर जगह तो नहीं है, देखिए इसमें वेरिएशन
मेजॉरिटी है,
नहीं बहुत मुश्किल है, यानी कि जहां जहां पे जहालत है
ठीक है, औरत जाए सॉरी औरत को पढ़ाया
नहीं गया क्योंकि वो बेचारी, तो ये चीजें काफी कॉमन है जहां जहां पर जहालत ज्यादा है तो उसमें। लेकिन लेकिन जैसे कराची के जो माहौल है, मैं नहीं समझता कि कराची के अंदर मेजॉरिटी ऐसी, फॉर एग्जाम्पल, या इस तरीके से मेरे जानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा पूरा खानदान है खुदा का शुक्र है, वहां पर ऐसी कोई किसी भी किस्म की हरकतें नहीं।
देखिए सिलेक्टेड घराने हैं जहाँ पर नहीं, मैं मानती
हूँ कोई वो इस तरीके की ट्रीटमेंट होते हैं,
मगर जैसे हम वेस्ट में जब रह रहे हैं तो हमने बहुत सी अच्छी चीजों के साथ ये बुराई भी अपनाई है कि औरत इक्वली काम करेगी हर चीज। सॉरी मैं टाइम ज्यादा ले रही हूँ, मैं जहाँ मुझे लगे तो मुझे रोक दीजिएगा। औरत इक्वली काम करेगी शोल्डर टू शोल्डर और साथ में घर भी देखेगी, तो यहाँ पे जिम्मेदारी कुछ और
ज्यादा है। प्रॉब्लम तो यही है ना कि हम इस्लामी अकदार से हट रहे हैं ना, मतलब अपने मुसलमान माशरों में एक प्रिटेक्स्ट पे, गैर मुस्लिम माशरों में दूसरे प्रिटेक्स्ट पे। और देखें एक बात बहुत सादा है, आपको पता है कि जो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जिस पर मैं मुसलसल हिट कर रहा होता हूँ, हैमर कर रहा होता हूँ, वो एक ही बात है कि जब तक इंसान खुदा के बनाए हुए कवानीन की पाबंदी नहीं करेगा, सबसे पहली बात कि लाइफ इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, ये रैंडम नहीं है कि जिसका जो दिल चाहे करता है। ठीक है, और जो खुदा के बनाए हुए कवानीन को तोड़ेगा, उसको नहीं करेगा, उसकी लाइफ ट्रबल में आएगी इन वन वे और द अदर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तुम्हारे पास पैसा है या नहीं।
ठीक है,
कानून है खुदा, यह कानून है खुदा। तो हम वहां पर एक गरीब होने की वजह से, गरीब होने का बहाना बना के कानून खुदा तोड़ते हैं, या अमीर होने का बहाना बना के कानून खुदा तोड़ते हैं, दोनों जगह ही मुसीबतें।
ठीक है,
तो इसका हल तो यही है कि आप भी जिसको भी आप तरफ समझाएं तो कहें भाई पहले खुदा ने जो चाहा है ना तुमको बनाना, उससे करीब होने की कोशिश करो।
तो बात वही आ गई
जी,
बात वही आ गई कि एजुकेशन, हमारे इस्लामिक एजुकेशन की जरूरत है,
एजुकेशन
चाहे वो औरत हो या
एजुकेशन से ज्यादा मारिफत,
मारिफत सॉरी जी,
आप तौजीउल मसाइल हटा दीजिए, आप तौजीउल
मसाइल
हटा दीजिए, मारिफत की इंसान जिंदगी को तो पहचाने ना। मैं देखें मिसाल के तौर पर एक सिर्फ एक जुमला, मैं किसी भी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी खुद सताई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जिंदगी में इस बात को खुद समझा है बिहम्दुलिल्लाह, ये मेरे दीन ने मुझे ये बात समझाई है कि मैंने अगर किसी भी इंसान की जिंदगी को 1% भी खराब किया, खुदा की नजर में मेरी 1% भी वक्त बाकी नहीं रहेगी। ये बात मुझे किसी ने नहीं बताई, ये मेरे दीन ने मुझे ये बात समझाई। तो ये बात लोगों की समझ में नहीं आती क्या? ये बात लोगों की समझ में नहीं आती कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है एक मुसलमान के लिए कि वो किसी भी इंसान की जिंदगी में खराबी का वसीला बन जाए, जरिया बन जाए। तो ये मारिफत जब आती है तो फिर जाहिर है कि तमाम मामला दुरुस्त होना शुरू हो जाते हैं। जी अम्मार साहब,
अस्सलाम वालेकुम।
जी
आपने अभी सवाला दिया था कि आयत का कि अगर तुम सबर और शुक्र करोगे तो मैं तुम्हारे अंदर
शुक्र 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 सबर नहीं है वहां पे, शुक्र लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। जी
सबर लेकिन रवायत में तो ऐसे ही चल रहा है ना, सबर और शुक्र साथ साथ। खैर चलें जो भी है, तो सवाल मेरा ये था कि अगर शुक्र कोई करता है और उसके अंदर फिर वो इजाफा होता है तो ये एक कानून नजर आ रहा है, जैसे कि अगर कोई इंसान अगर वो परहेज करता है तो उसको सेहत मिलेगी, वो डाइट करता है तो उसका वजन कम होगा, तो ये उस कानून पे ही चल रहा है कि कुछ करने के बाद मिलेगा या खुदा उसके अलावा भी कुछ इजाफा करेगा।
देखिए ये एक कानून, हर चीज कानून है, खुदा करे कि हम सब के दिमागों में ये बात बैठ जाए कि जिंदगी कवानीन पे चलती है, ठीक है, और उन कवानीन को सीखने की हम एफर्ट करें, ये हमारा सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम। देखिए कानून मैं आपको बताऊं कि खुदा ने क्या कानून मुकर्रर किया है कि अगर तुम बुराई करोगे तो उस बुराई का बदला एक के बदला एक से ज्यादा नहीं, और अगर तुम अच्छाई करोगे तो बदला कम अज कम 10 times है, मिनिमम 10 है, ज्यादा की कोई हद नहीं। कानून समझते हैं? जी
लेकिन मैं बस वही पूछना चाह रही हूँ कि इधर भी उसी तरह के कानून के ऊपर ही चल रहा है या कुछ ऊपर कोई बोनस पॉइंट्स हैं?
तो काम तो बोनस नहीं है क्या कि अगर आपने एक नेकी की, एक नेक सिफत पैदा की, तो खुदा कभी भी 1:1 नहीं देगा, मिनिमम कितना देगा? 1:10। अब ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी पर, जितनी आपकी मारिफत ज्यादा, जितना आपका ईमान ज्यादा, उतना ही अजर ज्यादा होगा। यानी अगर कोई आलिम है तो उसको 1:10 नहीं मिलेगा, उसको मे बी 1:700 मिले, 70,000 मिले, एंड सो ऑन,
एक सिफ्ट के बदले में।
जी एक नेकी के बदले में, एक नेकी के बदले में। तो आपको अगर अपनी नेकियां ज्यादा मल्टीप्लाई करना है तो अपने इल्म और मारिफत को میں اضافہ کریں، خدا کی بارگاہ میں باعزت بنیں زیادہ سے زیادہ، تو آپ کی ہر نیکی جو ہے وہ پھر بہت زیادہ ملٹی پلائی ہوگی. جی یہ جی بولیے.
یہ بچوں سے ریلیٹڈ میں آپ سے پوچھنا تھا، بچے جب لڑتے ہیں آپس میں اور ایک بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے، اور چھوٹے والے کا کوئی ایسا فیز آیا ہوا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہاتھ اٹھا رہا ہے ماں باپ پہ نہیں اپنی بہن پہ، تو اس کو کس حد تک ڈانٹنا چاہیے یا بار بار یا اگنور کرنا چاہیے، یا وہ بہن ہی اس کو ڈیل کرے پھر؟
نہیں، اس میں عام طور سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک جب بچے ہوتے ہیں تو ان میں ایک نیچرل جیلسی پیدا ہو جاتی ہے، اور یعنی اس کی جو ایک بڑا ہمارے یہاں مشہور جملہ ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ میری گود چھن گئی ہے، کہ پہلے میں سب کی نگاہوں میں تھا، لاڈلا تھا، کسی اور نے آ کے میرے شیئر آف لو کو لے لیا ہے. تو بچہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر بد نفسی والی یا بدتینتی والی تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، وہ نیچرل وے میں ہی ایکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے بچے کے ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے پہلے روٹ آف دا پرابلم کو دیکھیں اور پھر روٹ آف دا پرابلم کو دور کریں. مارنے پیٹنا تو بالکل ہی فضول چیز ہوتی ہے. کبھی کبھی جب بچے بہت زیادہ اگر حدوں سے آگے جائیں تو آپ ضرور ان پہ سختی کریں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے عام طور سے کہ ماں یا باپ میں سے یا اگر اور کوئی قریبی ہے وہ اس بچے کو اسپیشل اٹینشن دینا شروع کرے، اور اس کو یہ احساس دلانے کہ جس طریقے سے کہ ماں اور باپ آپس میں مل کر طے کر لیں کہ اب جو ہے نا، جیسے فار ایگزامپل بچی ہے تو اس کو زیادہ آپ دیکھیں، اور پھر باپ جو ہے نا وہ بیٹے کی طرف زیادہ توجہ کریں اور ان کو وہ احساس دلائیں کہ نہیں، یو آر اسٹل ویری امپورٹنٹ ان اور آئیز. آپ اس کو جتنا ڈانٹیں گی اس کے نفس میں، نفسیات میں یہ بات زیادہ قوی ہوتی چلی جائے گی کہ دیکھو میں ان کی نظروں میں گرتا جا رہا ہوں، وہ اور الٹی حرکت کرے گا.
اگر چھوٹا والا بڑے کو مارے تو بھی یہی چلے گی
وہ؟ ہاں، اب اس کا نہیں، لیکن اصول یہی ہے کہ بچے جو ہے نا جب وہ اپنے اس بات کو فیل کرتے ہیں کہ میری امپورٹنس ختم ہو رہی ہے تو وہ ان کے اندر پھر یہ جھنجھلاہٹ اور جھلاہٹ پیدا ہوتی ہے اور وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، تو اس احساس سے ان کو باہر نکالنا ہوتا ہے.
سم ٹائم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو اس حرکت میں صرف ایک مزہ آ رہا ہو.
بہت مشکل ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر خدا نہ خواستہ ایسی بات ہے تو پھر یہ اب نارمیلٹی ہے. جی شبینہ رضوی.
السلام علیکم. آغا
وعلیکم السلام.
بس تھوڑا سا گھریلو مسئلے میں یہ ہے، مجھ سے آپ سے دریافت کرنا کہ جیسے خدا نے شوہر کو بہت درجہ دیا ہے، مزاجی خدا تک کے لیے بھی کہا گیا ہے، تو اگر گھر میں مطلب بیوی کچھ بتانا چاہ رہی ہے کہ جیسے صلہ رحمی کو لے کے کہ وہ باہر آفس میں بیزی رہتے ہیں، 10 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے آتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ کہیں جانا ہے، آنا ہے، کس سے ملنا ہے، کس سے کیسے تعلقات رکھنے ہیں، یا اگر کس نے ان سے کچھ کہہ دیا تو اس کو وہ دل میں لے کے بیٹھ گئے، اب اگر بیوی کہہ رہی کہ ارے ختم کریے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ میری نصیحت یہ کر رہی ہیں، ان کو نہیں ضروری ہے. تو ایسے میں مطلب ایک وائف کا، ایک بیوی کا کیا رول ہے کہ وہ خاموش ہو جائے یا ان کی نصیحت کرتی رہے کہ دھیرے دھیرے ان کے ذہن سے یہ بات نکلے، برین واش ہو کہ یہ بات صحیح یہ کہہ رہی ہیں، کیونکہ اس میں بھی تھوڑا سا گھر میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ ایک مرتبہ میرے شوہر کے لیے، میں یہاں انڈیا سے بول رہی ہوں، تو میرے شوہر نے کسی سے مجلس کے لیے پڑھنے کو کہا، اور وہ جب میرے سارے پرچے ورچے سب چھپ گیا، پورا انتظام ہو گیا، اور اس کے بعد جب ٹائم آیا تو وہ دوسرے شہر میں چلے گئے سیم ٹائم پہ مجلس کے لیے پڑھنے کے لیے. تو اب وہ بہت زیادہ مطلب ٹینشن، ظاہر سی بات ہے کہ سارا مجمع اکٹھا ہو چکا ہے اور وہ نہیں. تو مطلب ایک بات یہ بتا رہی ہوں کہ یہ ہوئی اس طرح سے، مطلب ان کے آ جاتی ہے لوگوں کے لیے جلدی، دل ان کے برے ہو جاتے ہیں، تو بہت پھر بعد میں فوراً ہی وہاں پر کے پیشے نماز تھے، امام سے نماز پڑھوا، وہ مجلس سوری پڑھوائی گئی، وہ ہو گیا، لیکن ان کو دل میں وہ چیز کی تکلیف بیٹھ گئی کہ یہ انہوں نے میرے ساتھ دھوکا کیا. اب ان کا دل ان کی طرف سے صاف نہیں ہو رہا. اب میرا یہ مزاج ہے कि 4 दिन की जिंदगी है, अभी हम लोगों ने कोविड पीरियड में देखा है कि जिंदगी किस तरह से एक एक पल में खत्म हो रही है। तो दिल में कुछ ना रख के हम कुछ अल्लाह पे भी छोड़ दें, खुदा पे भी छोड़ दें कि कुछ वो फैसले करे, सारे फैसले हम यही दुनिया में करके चले जाएंगे, तो वो इस चीज को उतना नहीं समझ पाते। तो बस मुझे आपसे यही दरियाफ्त करना है कि ऐसे मैटर में मैं उन्हीं को छोड़ दूं कि वो खुद इतने समझदार हैं, इतनी उम्र है कि समझें, या उनसे कहा जाए कि घर का माहौल भी
ना। इसमें नहीं, जाहिर है कि जो आपने बात जैसी बयान फरमाई है कि इसमें यकीनन इस्लाह की जरूरत भी है, गुंजाइश भी है
जी।
तो उस हवाले से, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यानी कि जैसे आपके कहे हुए का ज्यादा असर नहीं है, अगर कोई और रिश्तेदारों में से ऐसा है कि जिसकी बात वो ज्यादा मानते हैं या उसको करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि वो थोड़ा समझा दें या उनके थ्रू से एक बात पहुंच जाए, ये एक बात पॉसिबल होती है। और दूसरा ये होता है कि हमारी जिंदगियों में एक एक फैक्टर है जिसको हम कम इस्तेमाल करते हैं, वो ये है कि हम अगर अपनी जबान बंद रखकर और अपने अमल से जो बात हम बताना चाह रहे हैं उसको ज्यादा एक्सप्रेस करें
जी।
तो शायद दूसरे पर ज्यादा, क्योंकि हम अक्सर औकात ये करते हैं ना कि जब कोई किसी को भी गलती को देखते हैं तो उससे
तो
काउंटर आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं, यानी आर्ग्यूमेंटेशन पे आ जाते हैं, और जब हम आर्ग्यूमेंट ज्यादा करते हैं तो जाहिर है कि दूसरा भी फ्लेयर अप रफ्ता 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 करके होता चला जाता है। और जैसा आपने बताया तो जाहिर है कि हमारे यहाँ बहुत सारी सोसाइटीज में ऐसी सूरत हाल है के जो मर्दों की अना ज्यादा होती है
जी।
तो वो अना ही बीच में आ जाती है,
वो यही है, वो हर्ट होती है,
तो उसका जो तरीका है वो यही है कि अपने अमल से बात ज्यादा की जाए बनिस्बत जबान के, और किसी ऐसे शख्सियत को बीच में डाला जाए समझाने के लिए कि जो उनकी नजरों में ज्यादा रिस्पेक्टेबल है।
अक्सर हो जाता है तो फिर वो उनका दिल जो है वो क्लियर ही नहीं हो पाता किसी की तरफ से।
और तो देखें, एक बात मैं आप सबसे कह रहा हूं, आप अपने घर में ना अपने घर वालों के लिए दुआ जरूर किया करें। करते हैं दुआ नमाज के बाद
जी?
अपने हस्बैंड हो तो वाइफ के लिए, वाइफ हो तो हस्बैंड के लिए, पेरेंट्स के लिए, औलादों के लिए, खानदान वालों के लिए। और जो सबसे बड़ी दुआ हमें हम में से हर एक को एक दूसरे के लिए करना चाहिए वो ये कि ऐ रब्बुल आलमीन हमारी हिदायत में इजाफा फरमा, हमारे अंदर से बुरी सिफात को ज्यादा से ज्यादा दूर कर और नेक सिफात बढ़ाता चला जा। ये दुआ का बहुत असर है। हाँ, जो भी है मतलब आयत पढ़ें या अपनी जबान में बात करें
जी,
दुआ जरूर किया करें एक दूसरे के लिए, इसके बहुत कोई फवाइज और बरकत है जी। ये एक और साहब का हाथ हैंड रेज है। जी बोलिए।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
डॉक्टर साहब, मैं अकील शेराजी बात कर रहा हूँ मेलबर्न से। तो हमें याद है कि आप यहाँ आए हुए थे, तो खैर अभी टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है तो काफ़ी और भी लोग होंगे। हम आपसे एक सवाल, बस काफ़ी दोस्तों के साथ हम बहस भी करते रहे और मेरी अक्सर दोस्तों के साथ ये बहस होती रही है, हमें बस ये पूछना था, हम सबको सलाम करते हैं, सब जो हमारे बड़े जितने भी मौलाना हैं, जो मजलिसें पढ़ते हैं, जो सैयदुल शुदा की अजमत बयान करते हैं, सब कुछ हम सब हमारी सर आंखों पे, हम सब उनकी इज्जत करते हैं। हमें सिर्फ ये पूछना था, जब हम कराची से पहली क्लास में पढ़ते हुए आए, दूसरी थे मैट्रिक किया, इंटर किया, फिर हमने सीएस किया या चार्टर्ड ऑफ अकाउंट बने, कुछ भी जो भी हमने एजुकेशन हासिल की, उसके बाद हम हौज़ इल्मिया चले गए, वहां से हमने इल्म हासिल किया, दीनी इल्म जिसको कहा जाता है, दीनी इल्म हासिल करने के अब हमने जब सब आवाज आ रही है मेरी
दी,
तो
उस इल्म हासिल करने के बाद जब हम अहले बैत का जिक्र करना शुरू हो गए तो उसके उसके बाद हम उस अब मुझे ये बस मेरे जहन में एक बात ये आई है कि अब समझ में नहीं आ रहा कि जब हम मिंबर पे आके बैठ जाते हैं, हम अजमत अहले बैत और दीन के, खुदा के और आइमा अहले बैत के कौल और सारी चीज़ें हम बयान कर रहे होते हैं, और उसके इवज जो हम मिंबर से बैठ के अपनी पूरी फैमिली का किसी इमाम बारगाह से, किसी ट्रस्ट से उसका जो मुआवजा हम हासिल किया जा रहा है, एज ए वो जॉब हुई के या इबादत हुई?
नहीं, तो जिस
पढ़ा लिखा है चार्टर्ड ऑफ अकाउंट बन गए हम, वो हमने फील्ड तो रख दी, लेकिन अब हम दीन की तरफ आ गए, उसके लिए हमने एक पैकेज ले लिया और उसी पैकेज के जरिए हम दीन की तबलीग करें। तो जिस तरह हम सुबह जॉब पे जाते हैं और शाम को घर लौट आते हैं, अगर हम जॉब पे जाएं तो जॉब वाले हमें पैसे नहीं देंगे, इसी तरह तो क्या ये जॉब हुई कि या ये खिदमत हुई? बस इसका मुझे थोड़ी
देखें, जो लोग भी करते हैं काम, अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं दीन के हवाले से, तो बहरहाल जरूरत तो उनको भी है ना अपना घर चलाने की, या नहीं घर चलाने की जरूरत है, खर्चे उनके पास भी हैं। इसी तरीके से अपने म्यूट कर लें जरा जी, इसी तरीके से उनके पास भी जरूरियात भी हैं, मसाइल हयात भी हैं और चीजें भी हैं कि जो यानी कि इवन जो बड़े बड़े मुज्तहिदीन हैं, जो आयतुल्लाह हजरात हैं, तो उनके भी खर्चे जो खुम्स के पैसे उनके पास आ रहे होते हैं तो उन्हीं से पूरे हो रहे होते हैं ना, वो कोई जाके कोई फील्ड में जॉब थोड़ी कर रहे होते हैं। तो यानी कि दीन का एक निज़ाम है, हाँ इसमें हर्ज नहीं है कि आप अपनी ज़रूरत भर लें और इज्जत के साथ रहें, लेकिन जो हजरात फिर दीन को माल कमाने का जरिया बनाते हैं, जायदादें बनाते हैं, वो यकीनन काबिल एतराज़ बात है। लेकिन ये प्रोविजन, ये हक तो माशरा देगा ना लोगों को कि जो दीनी एतबार से खिदमत कर रहे हैं कि भाई आप भी बाइज्जत जिंदगी गुजारो, या नहीं देंगे आप तो वो क्या करेंगे? अच्छा, और अगर आप उन्हें इस पर मजबूर कर देंगे कि आप जाके 9 to 5 जॉब करें, तो वो जो दीन का काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी गिर जाएगी, क्योंकि उसके लिए मेहनत चाहिए होती है, उसके वो ऐसे थोड़ी होता है कि आप 9 to 5 जॉब भी कर लें और उसके बाद आके आप सारा इल्म भी सिखा दें और सारे तहकीकात भी कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये तो माशरे को खुद ख्याल रखना चाहिए इस बात का कि वो लोग जो दीनी एतबार से हमारी खिदमत कर रहे हैं उनकी जरूरियात का हम लिहाज रखें, इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन उनकी भी अपनी जिम्मेदारी कि वो इस जिम्मेदारी को लेकर जो है कि ये ना करें कि उसको उन्हें माल जमा करने बटोरने या उसमें लग जाए, बाकी तो बहरहाल है अपनी।
जी, शुक्रिया बहुत बहुत, जज़ाकल्लाह।
सही मुबशर भाई, फिर आज कंक्लूड करते हैं।
जी, अब दुआ करवा दें।
जी, बस दुआ तो इतनी सारी हो गई, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। परवरदिगार आलमीन, जिन लोगों ने भी इसको सुना समाअत किया, खुदावंद अली व अज़ीम उनकी तौफीकात में मारिफत में ख़ास तौर से इजाफा फरमाए, दुनिया और आखिरत की बरकतें अता फरमाएं, और जो सबसे अहम तरीन मारिफत है वो ये है कि हम अपनी दुनिया और आखिरत को बैलेंस करने के काबिल हो जाएं, कि हमें खुदा ये तमीज़ सिखा दे कि दुनिया के लिए कितना इन्वेस्ट करना है और आखिरत के लिए कितना इन्वेस्ट करना है। तो बस मैं यही कि आप लोगों की जिंदगियों में दुख तकलीफ परेशानियां कम से कम हों, अजियतें कम से कम हों, खुदा जिंदगी को अच्छा रखे, माशी माशरती औलाद की हर किस्म की तकलीफ और अजियत से आपको बचाए, और जो भी तकलीफ जिंदगी में आए वो ऐसी आए कि जिससे आप एक बेहतर इंसान बने इंशाअल्लाह। اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب موت آئے تو اسلام اور ایمان پر آئے. باقی خدا ہم سب پر رحم کرے. اللہم صل علی محمد.